तो शुक्र की अब दूसरी किस्म क्या है, मखलूक की तरफ से शुक्र। इसको भी देखिएगा, इसमें आपको मुझे बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिखेंगे अपनी ज़िंदगी की। मखलूक की तरफ से अदा किए जाने वाले शुक्र की दो किस्में हैं। नंबर एक, मखलूक का शुक्र अल्लाह अज़्ज़वजल के लिए। मखलूक का अल्लाह अज़्ज़वजल के लिए शुक्र गुज़ार होना एक लाजमी अमर है, यानी हम बंदे हैं, हमें सजता ही ये है कि हम अल्लाह के शुक्र गुज़ार हों। जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने अपने बंदों को दिया है, अल्लाह ने हमें अपना जिक्र करने और अपना शुक्र अदा करने का हुक्म दिया है। सूरत बकरा 152 में आता है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, बस तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा, और तुम मेरा शुक्र अदा करो और मेरी न शुक्री न करो। इसी तरह फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरूलिल्लाह, सूरत नहल आयत 114-114। ईमान वालों, खाओ इन पाकीज़ा चीज़ों में से जो हमने तुम्हें अता की हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करो। अच्छा, खाने के साथ शुक्र का क्या मामला है? जो ताकत एनर्जी खाना खा के मिली है ना, उसको नेकियों में इस्तेमाल करो। सीधी सी बात है, खाएं खूब मतलब मज़े का टेस्टी हैवी मीट और ना शुक्रिया करें, इससे बड़ी ना कदरी कोई नहीं है उस चीज़ की। और अमूमन देखिए हमारे साथ क्या होता है, आम रोज़ चले, कभी दाल साग बना लिया, कभी सब्ज़ी खा ली, कभी गोश्त खा लिया, तो नमाज़ें भी पूरी पढ़ लेते हैं, अपने आप को भी ढका छुपा ही रखते हैं, और जिस दिन खूब अच्छा खाते हैं, और सबसे बढ़ के शादी के दिन जो सर से लेकर पांव तक दुल्हन नई बनी होती है और उसके ऊपर लाखों रुपया लग चुका होता है, उस दिन ना शुक्री कितनी होती है, उस दिन कितनी हम अल्लाह की ना कदरियाँ करते हैं। तो इसको बैठ के सोचना है, मेरा हाल शादी हाल में जाकर इंसान अगर ये बातें सोचने लग जाए तो अगली दफ़ा वो ऐसा काम कभी भी ना करें। इंसानों का मिजाज क्या है, जितनी नेमत ज़्यादा मिलती है उतना आपे से बाहर है। वाजबी सा जिस्म है, वाजबी सा हुसन है, इंसान नपातुला रहता है। ज़रा हुसन आ जाए, जिस्म फिगर अच्छा हो जाए, सबको दिखाने को दिल करता है, तो ये ना शुक्री है। फिर इसी तरह अल्लाह ताला कहते हैं, वश्कुरु नेमतुल्लाही, सूरत नहल 114, और शुक्र करो अल्लाह की नेमत का। फिर कहा, कुलू में रिस्की रब्बिकुम वश्कुरु लहू, खाओ अपने रब के रिस्क में से और शुक्र करो उसका। बल्दतुन तय्यिबतुन, शहर है पाकीज़ा, व रब्बुन गफूर, और बख्शने वाला रब। इसको पढ़ के तो अजीब सी कैफियत होती है। अब देखिए कि सिर्फ मिसाल से समझिएगा, यानी ये सब में कौम सबा का किस्सा था जिन्होंने नाशुक्री की थी, तो अल्लाह ताला ऐसी ही कौमों की बात करते हुए कहते हैं कि तुमने कभी सोचा, दिया तुम्हें रब ने, खाओ अपने रब के अता में से, पता चला कि जो मिला वो उसका है, शुक्र करो क्योंकि पाकीज़ा शहर है। यानी वो इतना कहना चाहिए कि फ्रूटफुल सिटी था कि कहते थे कि सर पे कोई टोकरा रख के अगर गुजरता था तो खुद से पक पक के गिरे हुए फलों से वो टोकरा भर जाता था, कि पाकीज़ा शहर और रब्बुन गफूर। आप देखिए इसको यूँ समझिए कि बाज़ दफ़ा शादी होती है ना, तो लड़की को बहुत जेवर कपड़ा बहुत दुनिया की चीज़ें मिलती हैं, लेकिन शौहर इतना प्यार नहीं करता, तो वो चीज़ें ज़रा कम अच्छी लगती हैं या खुशी बोनी। दूसरी सूरत है, शादी हुई, बहुत प्यार करता है शौहर, लेकिन असबाब नहीं है। लेकिन वो बच्ची क्या लोगों की नज़रों में आइडियल नहीं बन जाती कि जिसको दुनिया की भी नेमतें बड़ी मिलें और शौहर का प्यार भी मिले? अब ये सिर्फ मिसाल उधर है, दुनिया भी अल्लाह दे और फिर साथ आपसे प्यार भी करे, इससे बड़ी कोई दौलत दुनिया में हो सकती है? सब कुछ इसके ऊपर कुर्बान है। कुरान मजीद में इसकी बहुत सी मिसालें हैं। बंदे के लिए इस तरह ये जायज़ नहीं कि वह अपने आका का शुक्र अदा करने में कोताही करे, इसलिए कि हम अल्लाह की अता करदा नेमतों का जवाब अपने पास मौजूद नेमतों से नहीं दे सकते। हमारे बस में है ही कहाँ कि हम ऐसा कर सकें, हम तो फ़कीर बेनवा और ख़ुद ही इसके मुहताज हैं। लिहाजा हम पर लाजिम है कि हम अल्लाह की बेशुमार अता करदा नेमतों के बदले में इसका शुक्र अदा करें। इसमें हम पर अल्लाह की रहमत है, क्योंकि अगर वो हमें अपनी नेमतों के बकदर शुक्र अदा करने का मुकल्लफ ठहरा देता, इसको नोट कीजिएगा, यानी लाजिम कर देता हर नेमत के साथ शुक्र करो, जितनी नेमत उतना शुक्र, तो हम कभी ऐसा ना कर सकते। मसलन सर पे कितने बाल हैं, अगर अल्लाह कहता पहले हर बाल का शुक्र अदा करो, चलो हर बाल के बदले में एक बार को अल्हम्दुलिल्लाह, कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। जिस्म पे कितने पोर्स हैं, अल्लाह कहता पहले अपने हर पोर का शुक्रिया अदा करो फिर तुम्हें खाना दूंगा, तो भूखे मर जाते हैं। ये तो उसकी रहमत है कि उसने हमें उतना नहीं कहा जितनी उसकी नेमतें हैं, लेकिन अफसोस क्या है कि हम उतना भी नहीं करते। ये भी अफसोस की बात है। अल्लाह ताला का सबसे बड़ा शुक्र गुजार बंदा वो है, ज़रा सोचिए, आप और मैं बनना चाहते हैं? बिल्कुल। तो नंबर एक जो सबसे ज़्यादा उसकी मार्फत रखता है, मार्फत क्या होती है? और उससे पहचान पूछिए, आपकी अल्लाह से जान पहचान है? मार्फत क्या है? देखिए, जिससे बहुत जान पहचान हो, क्या आपको उसकी पसंद नापसंद का पता होता? बिल्कुल होता है। वो किस चीज़ से खुश होता है, किससे नहीं होता? तो क्या मुझे अल्लाह की मार्फत है? देखिए, ये तो आपको यहाँ ही प्लस माइनस में जवाब मिल जाता है कि जितना आप अल्लाह को पहचानते हैं, उतना आप उसकी मर्जी के बनना चाहते हैं, उतना आप उसकी नाफरमानी से डरने लगते हैं। और वो हैं औलाद आदम के सरदार जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक बयान करते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई खुशकुन मामला पेश आता, तो इसका शुक्र अदा करते हुए अल्लाह अज़्ज़ व जल के हजूर सजदा रेस हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ ये भी एक बात नोट करें, साइड पॉइंट है, कि शुक्र पे नफिल नहीं है, सजदा है। नमाज नहीं है शुक्राने की कोई भी, जैसे हमारे हम बाज़ कहते हैं मैंने दो नफिल पढ़े शुक्राने के। शुक्र का मामला सजदे के साथ है, जहाँ खड़े हैं वहीं सजदे में चले जाएं। सब्र के साथ कोई और मामला हो सकता है, कोई दूसरा मामला हो सकता है। तो यहाँ क्या पता चला कि जब कोई खुशी का मौका मिले, सजदे में चले जाइए, वस्जुद वक्तरिब, सजदा कीजिए और अल्लाह का कुर्ब हासिल कीजिए। ये क्या था? मखलूक का शुक्र अल्लाह के साथ, ठीक है। अब क्या है? मखलूक का शुक्र मखलूक के लिए। इंसान दूसरे इंसान का शुक्रिया उस वक्त अदा करता है जब वो उसे कोई नफ़ा पहुंचाता है, ये भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लवाजमात में से है। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पढ़िएगा मेरे साथ, मल्ला यशकुरुन नासा ला यशकुरुल्लाह, जो शख्स लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता, वो अल्लाह का शुक्रिया भी अदा नहीं करता। ये एक वाज़े और मुसल्लिमा हकीकत है कि जो शख्स अपनी ज़ात पर अपने भाइयों के एहसानात का शुक्रिया अदा नहीं करता, तो यकीनन वो तमाम लोगों से बढ़कर अल्लाह का नाशुक्रा होता है। ख़त्ताबी रहमहुल्लाह जो कहते हैं, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता, वो अल्लाह का शुक्र अदा भी नहीं करता। इसका मफहूम बयान करते हुए कहते हैं, यानी इसे क्या मुराद है? कहते हैं कि इस फरमाने रसूल के दो मतलब हैं। क्या? नंबर एक ये कि जिसकी फितरत इंसानों की नेमतों की नाकदरी और इसके एहसानात की नाशुक्री हो, तो इसकी ये आदत बन जाती है कि वो अल्लाह अज़्ज़ व जल की नेमतों की नाकदरी करता है और उसका शुक्र अदा नहीं करता। दूसरा, जब तक इंसान दूसरे इंसान के एहसान पर शुक्रिया अदा नहीं करता, इस वक्त तक अल्लाह भी इसके शुक्र को कबूल नहीं करता, क्योंकि बंदे का शुक्र और अल्लाह का शुक्र लाजिम व मलजूम है। बंदे का शुक्रिया या तो इसका बदला अदा करने की शक्ल में होता है, या लोगों के दरमियान इसकी तारीफ़ में रतबुल लिसान, रतब कहते हैं गीला होना, रुतब से जैसे, तो रतबुल लिसान होने की सूरत में होता है, लिसान कहते हैं ज़ुबान को, या फिर इनके हक़ में दुआ करने की सूरत में है। हज़रत आयशा बयान करती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ऊत या इलैहि मारूफ़ुन, जिसके साथ कोई एहसान करे, खुद से पूछिए क्या मेरे साथ कभी किसी ने कोई एहसान किया? अगर किया तो क्या कीजिए? फल युकाफी बिही वमन लम यस्तती फला यस्कुरहु फमन ज़करहु फ़कद शकरहु फ़इल्लम यस्तती फलयदु लहु, जिसके साथ कोई एहसान करे तो इसे इसका बदला देना चाहिए, अगर बदला देने की इस्तेआत ना पाए तो इसका जिक्र खैर करे, क्योंकि जिसने इसका जिक्र किया गोया इसने इसका शुक्रिया अदा किया, बस अगर ये भी ना कर सके तो इसे चाहिए कि अपने मोहसिन के हक में दुआ करे। सुबहान अल्लाह। देखिए, एक भी काम अगर हम इसमें से कर लें तो अल्लाह के हुक्म से हक पूरा हो जाएगा। तो फिर इंसानों के साथ मामला करते वक्त बखील नहीं होना। देखिए, ढूंढें, आपके किसी से भी ताल्लुकात ख़राब हैं, घर में, बाहर, कहीं आप स्कूल में, कहीं भी हैं, जिसके साथ आपके ताल्लुकात ख़राब हैं, आप उसका शुक्रिया अदा करना शुरू कर दें। थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी। आप सिर्फ अपनी टोन चेंज कर लो उससे बात करने की, अल्लाह ऐसे तरीके से उसके दिल में आपकी मोहब्बत डालेगा, थोड़े दिन बाद में आपको अच्छा लगने लगेगा। ये बहुत बड़ी बात है। इसमें एक वाक्य मैंने कहीं पढ़ा था और उसको फिर शेयर भी किया था आज की बात में, कि एक लड़की थी तो वो किसी बुज़ुर्ग के पास गई और कहने लगी कि मेरी सास बड़ी सख्त है और मुझे बड़ा सताती है, ये है वो है दिस एंड दैट, तो मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बताओ या ऐसा इलाज बताओ कि वो मर जाए। अब उसका ख्याल था कि मर गई तो जान छूट जाएगी, हालांकि जान नहीं छुटती। खैर उसने कहा कि ये जो इलाज बताऊंगा, इससे पहले तुम्हें एक काम करना पड़ेगा कि तुम ऐसा करो कि उससे दोस्ती करो, अपनी सास जो है, तो फिर एक दिन बातों में लगाकर मैं तुम्हें एक ऐसी गुड़िया दूंगा, उसको खिला देना, तो वो उसको शक भी नहीं होगा और वो मर जाएगी। उसने कहा चलो अब ये करना तो पड़ेगा। फिर उसने कहा मैं क्या करूँ, कहने लगा बस जब रात को ये लेटती है तो तुम उसको जाकर एक दूध की प्याली दे देना, यानी उसको तरीके बताने लग गया, चाय दे देना, कभी बैठी हो तो कहना अम्मा मैं पाँव दबा दूँ। उसने कहा ठीक है। अब जब इसने इस सोच के साथ के ज़रा मेरी सास से मेरे ताल्लुकात अच्छे हों ये करना शुरू किया, तो इन दोनों में मोहब्बत हो गई। यानी आप देखें ना कि पहले ये बुरा सोचती थी ना तो इसको बुरी लगती थी, जब ये उसके साथ दोस्ती करने के मूड में बैठी थी इसको अपनी सास अच्छी लगने लगी। बात समझ गया? तो जब वो सारा अपना काम कर चुकी, अब दिल से ये चाहती थी कि मैं उसको ना मारूं, क्योंकि प्यार हो गया ना, जिस नज़र से आप किसी को देखोगे आपको वो वैसे ही लगेगा। तो फिर जब वो उसके पास गई तो उसने कहा कि आप बिल्कुल, तुम्हारी सास रेडी है, मैं तुम्हें किसी दिन भी जहर की बुढ़िया दूंगा तो उसको खिला देना। कहें कि मैं तो नहीं खिलाऊंगी इसको, मुझे तो अपनी सास बड़ी अच्छी लगती है। उसने कहा असल में यही इलाज था तेरा, तुम उसके बारे में नेगेटिव सोचती थी। याद रखिए, अब जिस चीज़ के बारे में नेगेटिव सोचेंगे वैसे ही होगा, और आज ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है। एक वाक्य, सच्चा वाक्य पढ़ा था कहीं हमने, एक शख्स था तो उसको सूली पे चढ़ाना था ना, हैंग करना था, फांसी देनी थी, तो डॉक्टर्स ने एक तजुर्बा करना था उसके ऊपर। उसको कहा कि देखो हम तुम्हें फांसी नहीं देंगे, बल्कि हम तुम्हें नाग, जैसे कोबरा होता है ना, सांप से डिसवाएंगे, तो मरना तो तुमने वैसे भी है, तो तुम ऐसे मर जाओ। खैर जब वो वक्त आया तो उसको लाया गया और उसको ना पट्टी उसकी आंखों पे बांध के बिठा दिया, तो वो मरने के लिए तैयार था। वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि अभी सांप मुझे डसेगा, और ऐसे ही हुआ। उसको बिल्कुल हल्की सी ऐसे ना चुभन का एहसास हुआ, और उसके साथ ही उसका दिल बंद हुआ और वो मर गया। जब मरा तो जो लोग तजुर्बा कर रहे थे उन्होंने उसकी पट्टी खोली, वो हैरान हुए, उन्होंने क्या किया था, सांप नहीं डसवाया था, कहते उसको सिर्फ एक कॉमन पिंच हुई थी, तो फिर मरा कैसे? अब ये बड़ी अहम बात है, यानी मैं कहती हूँ अखलाकी तरबियत में ये बात अगर आपको मुझे समझा दे कोई, झगड़े ख़त्म हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा ये जिस्म है ना, ये हमारे ब्रेन के अंदर है, हमारा ब्रेन जो मैसेज देता है ना उसके मुताबिक अंदर से ग्लैंड्स निकलते हैं, सिक्रीशंस निकलती हैं। वो सोच रहा था कि मुझे अभी सांप ने डसना है, उसके ब्रेन ने वही पिगमेंट जो सांप के जहर में होता है वो पैदा शुरू किया, और वो उसके साथ खौफ की वजह से मर गया। मरा वो खौफ से, पिन चुभी लेकिन उसको तो था सांप डसा है। पिन चुभने से कोई मरता नहीं, इसका मतलब है कि नेगेटिविटी आपके अंदर जहर पैदा करती है। जो बंदा नेगेटिव सोच का है वो, उसको या तो शुगर होगी, या ब्लड प्रेशर होगा, या वो चिड़चिड़ा होगा, या वो हर वक्त दूसरों से एक लड़ने मरने को तैयार होगा। स्माइली, रिलैक्स्ड, इंजॉइंग, आप देखिए ऐसे लोग गुनगुनाते हैं, लोग गालियाँ दे वो कहते हैं देते रहो मुझे क्या, मैं तो दुआएं दूंगा। तो हमेशा अपने साथ ये रहम करें। हमारी यकीन करें, इंसानों की ज़िंदगी इतनी अजीरन है ना, हमारे इंसानों के बिना गुजारा रह ही नहीं सकते, और ना उनके साथ गुजारा। आप किसी भी बंदे के बारे में सोचें, बंदे से मेरा जो भी बंदी बंदा जो आपको चुभता है, ये मर जाए, मैं इसके बगैर रह लूँ? मतलब आप देखिए कि कुछ औरतें वो शिकवा करती हैं शौहर का, और जी ऐसे हैं वैसे हैं, तो मैं उनको कहती हूँ अल्लाह ना करे आप चाहती हैं कि आपके शौहर फौत हो जाए? कहेंगे नहीं अल्लाह ना करे। अच्छा आप ये चाहती हैं कि आपको छोड़ दें, तलाक लेनी है आपने इनसे, फिर आप उसके बाद इद्दत गुजारेंगी, फिर उसके बाद दूसरी शादी कर ले? नहीं, ऐसा नहीं करना। तो फिर मैंने कहा आप इनके साथ ही गुजारा करें, सोच बदल लें, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा आपका खुद बहुत। तो बंदों के साथ तो यही मामला रखें कि मैंने किसी के साथ बुरा सोचना भी नहीं। और पीछे देखिए फिर इसमें तौहीद है, जब आपको यकीन है ना कि अल्लाह ना चाहे तो कोई मेरे साथ नेकी भी नहीं कर सकता, तो फिर आपको दूसरे नहीं बुरे लगेंगे। कोई बुरा करे तो आप सोचिए अल्लाह इसको चाहता तो रोक लेता, लेकिन अल्लाह ने इसको नहीं रोका, इस बेचारे का कसूर नहीं है। फिर इस तरह से आप देखिए कि उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु से बयान करते हैं कि नबी सल्लम ने फरमाया मन सुनिया इलैहि मारूफ़ुन फ़क़ाल लिफ़ाइलिही जज़ाक अल्लाहु खैरन फ़क़द अबलग़ फ़ि सनाई। देखिए कितनी प्यारी रिवायत है कि जिसके साथ कोई नेकी और एहसान किया जाए तो वह एहसान करने वाले से कहे कि अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे, तो दर हकीकत इसने तारीफ़ की इंतहा कर दी। अब आप देखिए आज हमारे यहाँ ये बस एक आदत होगी, जज़ाक अल्लाह खैर, ये इतनी बड़ी बात है। अच्छा बाज़ दफ़ा कोई चीज़ दे, खिलाए पिलाए, तो आप कहते हैं जज़ाकल्लाह खैर, तो लोग कहते हैं नहीं 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 ना अब ऐसी कोई नहीं बात, तो मैंने कहती हूँ क्या हुआ आपको, दुआ दी जा रही है आपको, बुरी बात है क्या, आप चाहती हैं कि अल्लाह आपको जाना दे? यानी इतना माइंड हमारा ट्रैप हो चुका है कि हम इन चीज़ों की असल को ही नहीं देख रहे होते, तो फिर अमल क्या है? कोई बंदा बड़ी छोटी आपसे नेकी करे, आप उसको कहिए कि अल्लाह आपको इसकी जजा दे। और ये भी याद रखिए कि जजा अच्छी भी होती है बुरी भी, इसीलिए हम कहते हैं जजाक अल्लाह खैरन। किसी पे शक हो ना कि इसने बुरी नियत से की, तो कहते हैं जजाक अल्लाह। अब खैर थी तो खैर मिल जाएगी, शर था तो शर मिल जाएगा, लेकिन जिसको आप समझते हैं दुआ दे रहे हैं तो आप जजाक अल्लाह खैरन कहें, फिर इंशाल्लाह आप उसको फ़ायदा दे रहे हैं। एहसान करने वालों के एहसान करने का यही तरीका होता है, लेकिन इसको तर्क करना ज़्यादती है। इमाम अहमद रहमहुल्ला ने तो इस एहसान नाशनासी को गुनाहे कबीरा करार दिया है, क्योंकि आपने तो इसको दोजख की आग से डराया है। जैसा कि सही बुखारी और मुस्लिम में आपका इरशाद है, ऐ औरतों सदका इस्तगफार ज़्यादा करो, क्योंकि तुम में से अक्सर को मैंने आग में देखा है। एक औरत ने कहा क्या वजह है कि हम जहन्नमी हैं? आपने फरमाया ज़्यादा लान तान करती हो और खामन की एहसान फरामोश हो। ज़रा सोचिए, ये देखिए लफ्ज़ अरबी के अंदर जो आए हैं ना वो अशीर कहते हैं, ये इसीलिए थोड़ी डिस्क्रिप्शन है। अशीर मुआशिर से है, ये अरबी का लफ्ज़ है जिससे मुराद खाविंद है। तक फुरनल अशीर यानी खामन की एहसान फरामोश। औरत को जब इसकी तबीयत के ख़िलाफ़ कोई बात सुनना पड़े तो वो कहती है कि मैंने तुमको कभी अच्छा नहीं पाया। सच अपने दामन में झांक ले। ये तो देखिए अल्लाह के नबी ने कहा है, अब वो कोई हमसे तासुब तो नहीं रखते थे। 10 बातें पूरी करते शौहर एक ही ना करे। वो जैसे एक बीवी थी ना तो अपने शौहर को कहती है आप मेरी बात नहीं मानते, आप भी कहती होंगी, कहती हैं। तो उसने कहा नहीं, असल बात ये नहीं है, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी हर बात मानूं। बात मैं तुम्हारी मानता हूं पर हर बात मैं नहीं मान सकता। और औरत की जब तक हर बात ना मानी जाए वो कहती है कुछ नहीं माना, ये है ना शुक्रपन। अब अपने आप दामन में हम सब खुद ही देख लें। इमाम इब्ने कय्यिम रहमहुल्ला ने फरमाया, पस अगर खामन किसी एहसान फरामोश का ये हाल है जो असल में अल्लाह का दिया हुआ है, तो अल्लाह की नेमतों का शुक्र तर्क करने का क्या होगा? सोचिए खामन क्या है, क्या देगा? तहफ्फुज़, इज्जत, माशरे में मुकाम, रोटी कमा के ले आता है, उसकी नाशुक्री का ये हाल है तो फिर अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री का क्या हाल होगा? आप ज़रा सोचें तो वाकई इंसान अपने बारे में परेशान हो जाए। अगर किसी से कुछ ज़रूरत पड़े तो अच्छे अंदाज से मुखातिब हों, अगर इसने हाजत पूरी कर दी तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, और देने वाले के लिए कलमा खैर कहें और दुआ करें, और अगर पूरी नहीं की तो फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें और इस शख्स के लिए अपनी तरफ से उज़र तलाश करें। ये भी बड़ी अहम बात है। देखिए बाज़ दफ़ा कोई नहीं हमारी फरमाइश पूरी कर सकता, आपको क्या पता वो कितनी मजबूरी में है। जो अगले ने किया आप कहते हैं ये नहीं, इससे ज़्यादा करना था। आप ये देखिए कि जो उसने किए वो कितनी जान पे रिस्क लेकर किए। आप और मैं दूसरे के हालात नहीं जानते, हम दूसरे की मजबूरियों को पूरी तरह नहीं जानते, तो बस बात फिर वही आती है कि उम्मीदें छोटी कर लें। आपको कोई थोड़ा भी दे तो आपको ज़्यादा लगेगा, थोड़ा भी आपका ख्याल करेगा तो ज़्यादा लगेगा, और जब बहुत बड़ी उम्मीदें बांध के किसी चीज़ को पकड़ते हैं तो वो जो मर्जी कर लें। बस आप देखिए कुछ सासें हैं उन्होंने खुश होना ही कोई नहीं, सीधी सी बात है। अब आप सब कहेंगे ये हमारी सास है, नहीं, कुछ होते हैं ऐसे केसेस वो दिल में सोचे बैठे ना खिदमत के लिए लाए हैं, मुन्ने के अब्बा बेटे की शादी कर दें, काम बहुत है मैं थक जाती हूँ, तो ये क्यों कह रहे हैं शादी कर दें, ये कह दें कि एक नौकरानी ले आते हैं। अब जिसने सोच के ये बहू लेकर आया कोई कि उसने घर का काम ही कराना है, तो वो तो सारा दिन करेगी तो फिर भी नहीं वो खुश होगी। तो आप क्या कहें, नहीं मैं एक औरत ला रही हूँ जो मेरे बेटे की इज्जत की हिफाजत करेगी, मेरी नस्ल की अमीन है, जो मेरे बच्चे को जिना से बचाएगी। अब अगर उसने मुझे चाय भी पिला दी तो बड़ा काम है। तो सोच बदल दें, बाकी काम सारे खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। एक बार कुतैबा बिन मुस्लिम रहमहुल्लाह के पास मोहम्मद बिन वासी रहमहुल्लाह आए, जो बुसरा के सबसे बड़े जाहिद थे। जाहिद किसको कहते हैं? जुहद वाला, तर्के दुनिया। और कुतैबा रहमहुल्लाह से कहा मेरी एक ज़रूरत है, अगर आप पूरी कर दें तो अल्लाह की हम्द और आपका शुक्रिया अदा करूँगा। ये नोट कीजिए, देखिए बाज़ जब हम लोगों की तारीफ़ें शुरू हो जाते हैं ये नहीं करनी चाहिए, शुक्रिया अदा कर दें, थैंक यू कह दें, तारीफ़ अल्लाह की करें। क्योंकि जब हम लोगों की बहुत तारीफ़ें करते हैं ना तो हम उनके दीन को बिगाड़ देते हैं, और बाज़ दफ़ा वो बेचारे इतनी खुशफहमी का शिकार होते हैं कि वो जैसे गुब्बारे में हवा भरती है ना उनके अंदर इतनी बड़ी हवा भर जाती है, वो फिर लोगों की बातों की नज़र से खुद को देख रहे होते हैं कि पता नहीं हम क्या चीज़ हैं। तो अपनी ज़िंदगी का ये असूल बनाएं, लोगों की तारीफ कम से कम। अल्लाह के नबी सल्लम के सामने किसी ने किसी की तारीफ की मुंह पे, तो आपने क्या कहा, किसी को याद है हदीस, कि तुमने उसको कुंद छुरी से हलाक कर दिया, यानी सीधी छुरी से काटा होता तो ख़त्म हो जाता, थोड़ा थोड़ा काटा है तो उसमें तकलीफ़ ज़्यादा होती है। कभी लोगों की मुंह भर भर के तारीफ ना करें, पीठ पीछे करना और बात है, मुंह पे तो बिल्कुल भी तारीफ नहीं करनी चाहिए, ये इस्लामी मिजाज ही नहीं है। शुक्रिया अदा कीजिए और देखिए पता लग जाता है आप किसी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं या चापलूसी कर रहे हैं, अगले को भी ये बात पता लग जाती है। फिर अगर पूरी ना करें तो अल्लाह की हमदो सना करूँगा और आपके लिए उज़र करूँगा। और इस तरह मंसूर के पास भी एक शख्स ने आकर कहा कि आपसे हाजत के लिए सवाल और आपकी नवाजिश अच्छी है, और जो जहां आपके पास हाजत के लिए आए ना मुराद और बदनुमा नहीं होगा। जिसे सुनकर मंसूर ने इसकी हाजत पूरी की। अब आप इस वाक्य से क्या समझी, दोहरा लीजिए। एक शख्स दूसरे के पास आकर अपनी एक ज़रूरत पेश कर रहा है, कह रहा है कि अगर आपने ये कर दिया ना काम, तारीफ़ अल्लाह की करूँगा, शुक्रिया आपका अदा करूँगा, और अगर आप पूरी नहीं कर सके तो अल्लाह की हमदो सना करूँगा, वो तो पहले भी कर रहा था, और आपके लिए उज़र रखूँगा कि आप नहीं कर सके। देखिए कितना प्यारा अंदाज़ है। बस जब हम किसी को कोई काम कहते हैं फिर वो ना करे तो हम बदगुमान हो जाते हैं, किया ही नहीं, कोशिश ही नहीं की, नहीं उज़र रखूँगा। और इसी तरह मंसूर के पास भी एक शख्स ने आकर आपसे हाजत के लिए सवाल किया कि आप बड़े अच्छे हैं, ये है वो है, तो उन्होंने उनकी जो बात थी पूरी कर दी। इसी तरह के बहुत से वाक़ियात हैं। मखलूक का शुक्रिया सिर्फ माल पर नहीं है बल्कि हाजत पूरी करना है और सवाल का जवाब देना, अच्छी सिफारिश करना या किसी की गैर मौजूदगी में इसके लिए दुआ करना। किसी ने क्या खूब कहा है, अगर किसी ने आपके लिए किसी मर्तबे से काम लिया गोया कि इसने अपने माल से काम लिया। क्या पता चला, मर्तबा होता है ना, इख्तियार है, सदर है, वजीर है, मेयर है, तो बाज़ दफ़ा किसी की बड़े ओहदे की वजह से काम निकल आते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि बंदा माल की वजह से किसी की मदद कर सके, बंदा दूसरी तरफ भी मदद कर सकता है। तो ये फिर टॉपिक कौन सा हमारा पूरा हुआ, शुक्र की अकसाम। खुलासा क्या था, दो किस्में, पहली क्या है, अल्लाह के साथ शुक्र, फिर मखलूक के साथ। फिर आप देखिए कि अल्लाह के साथ शुक्र के अंदर इंसान के हमने 9 पॉइंट सारे पढ़े। फिर मखलूक के साथ जो था उसमें फिर दो देखे थे, एक मखलूक का अल्लाह का शुक्रिया अदा करना और दूसरा मखलूक का शुक्रिया अदा करना। कोई सवाल या कोई चीज़ आपके जहन में इससे मुतल्लिक हो तो पूछ लें, कुछ शेयर कर दें। जी आप जी, शुक्र पे नफिल नहीं है, सजदा कर सकते हैं आप।
बस उसी टाइम सजदा, बस नफल नहीं पढ़ने
जब भी कोई खुशी की खबर आए सजदे में चले जाइए
सजदे में सजदे की दुआ
जी,
दूंगी।
जो मर्जी पढ़े, वो नमाज का सजदा तो नहीं है ना, असल में वो अल्लाह के आगे झुकने और आजजी का एक सिंबल होता है। चले, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला खैरि खल्क़िही व असहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।